आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के दौरान महिला भागीदारी पर दिया जोर। प्रदेश में आज से जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना का कार्य शुरू। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, जनगणना देश के विकास की नींव। प्रदेश में छठवें वेतनमान के कर्मचारियों का राहत और महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 257%, एरियर का भी मिलेगा लाभ। और राज्य के छतरपुर, रतलाम, सतना, मंडला सहित 20 से ज्यादा जिलों में पारा 40 डिग्री से पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की 50% आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नीति निर्माण में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना समय की मांग है। श्री मोदी ने आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान की बात कही।
हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया तो ये विषय ही नहीं। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा।
प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से इस ऐतिहासिक विधेयक को राजनीतिक रंग न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए लाभकारी होगा। श्री मोदी ने कहा कि इस विधेयक का विरोध करने वालों को भविष्य में इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक देश की दिशा और भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
पहले ही देरी कर चुके, कारण कोई भी होगी, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं तब मानते हैं हाँ यार, लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैं, मुझे याद है कि जिस इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़कर जिन जिन से मिलना हुआ है हरेक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है।
चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसे सरल बनाया जाना चाहिए और परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर आधारित होना चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है। उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विधेयक को जल्दबाजी में लाने पर सवाल उठाया। आपको बता दें कि संसद का 3 दिवसीय विशेष अधिवेशन आज से शुरू हुआ, जो 18 अप्रैल तक चलेगा। सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए चर्चा की जा रही है। इस अधिनियम में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। प्रदेश में 10 से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कैनवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि इसको लेकर नगर निगम सभागृह में विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। महापौर अमृता अमर यादव के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विधेयक के समर्थन में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया शामिल हुई। उन्होंने 33% महिला आरक्षण को ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि इससे नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। आज से प्रदेश में जनगणना का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज खुद स्वगणना का कार्य किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ आंकड़ों की प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के भविष्य को सही दिशा देने का महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की रीढ़ है और ये विकास की नींव है। इस बार की जनगणना डिजिटल और आधुनिक तकनीक के साथ हो रही है। प्रदेशवासियों को इसमें पूर्ण निष्ठा और सत्यता के साथ भाग लेना चाहिए। ये जनगणना हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए है।
16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटली स्वगणना अभियान का मैं स्वयं भागीदार भी बना हूँ। डिजिटली जनगणना में हम सब मिलकर के बढ़ चढ़ करके भाग लें। जनगणना के माध्यम से भविष्य में विकास की सारी रोडमैप बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, सब प्रकार की जन सुविधाएं और अलग अलग प्रकार के विकास के सारे पैमाने, इसकी दृष्टि से जनगणना का ये जो वर्तमान के दौर में अत्यंत और महत्व बढ़ जाता है।
प्रदेश में 16 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन स्वगणना का कार्य होगा। 1 से 30 मई तक मकान सूचीकरण होगा। ये प्रक्रिया डिजिटल रूप से होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया है। इस फैसले से कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा और लंबित एरियर का भी भुगतान सुनिश्चित किया गया है। संशोधित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। ये 1 जुलाई 2025 से प्रभावशील होगा। इस वृद्धि का वास्तविक लाभ कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से मिलना शुरू होगा। साथ ही 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर 6 समान किश्तों में मई से अक्टूबर 2026 तक दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को चरणबद्ध रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में 972.16 करोड़ के सड़क उन्नयन और पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। डॉ. यादव ने 106.34 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री यहां हनुमान मंदिर से लेकर पुराने बस स्टैंड तक आयोजित रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा के साथ पोषण को प्राथमिकता देते हुए शासकीय विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को टेट्रा पैक दूध उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। UGC ने कहा है कि इन पहलों से लैंगिक समानता, संवैधानिक मूल्यों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व के महत्व पर सार्थक संवाद को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही ये पहल समावेशी और सहभागी शासन की परिकल्पना में भी योगदान दे रही है। और अब खबर मौसम की। प्रदेश में पारा चढ़ने लगा है। आज रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में तेज गर्मी रही। इससे पहले प्रदेश में बुधवार को गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिले। सीजन में पहली बार 25 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच गया। इंदौर और ग्वालियर भी सीजन के सबसे गर्म रहे, यहां पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं बुरहानपुर, हरदा, रतलाम में गर्मी के कारण स्कूलों का समय बदला गया है। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आज सुबह से ही तेज धूप निकली है। सुबह से ही तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। तेज धूप के कारण गर्मी का असर बढ़ गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जनगणना 2027 के महाअभियान के अंतर्गत सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपनी स्वगणना की। गुना सांदीपिनी विद्यालय के विद्यार्थी हवाई जहाज द्वारा नागालैंड शैक्षणिक भ्रमण पर जाएंगे। शाजापुर के ITI कॉलेज में युवा संगम कार्यक्रम के तहत आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। राजगढ़ जिले से प्रदेश की प्रावीण्य सूची में भी इस बार छात्र छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन रहा है। इसमें 12वीं के 7 विद्यार्थियों ने टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराया है। इनमें 5 छात्राएं और 2 छात्र शामिल हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।